फिर से एक बार ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा एक है और वो सत्य है, तो उस सत्य परमात्मा की क्या पहचान है वो हम अभी जानेंगे। राजयोग का पहला कदम यही है, स्वयं को पहचान कर, आत्मनिश्चय कर, उसका अनुभव कर, फिर आगे बढ़ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। अगर स्वयं को रियलाइज नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो फिर परमात्मा को पहचानना भी मुश्किल है, असंभव ही है। और अगर खुद को पहचान लिया तो परमात्मा को पहचानना बहुत सहज है। अब कैसे वो सहज है वो हम अभी देखेंगे। क्या मिली अपनी पहचान कि इस देह के भीतर मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, जो शरीर की इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ और वास्तव में इन इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव करती हूँ। अनुभव करने वाली आत्मा है। विज्ञान के द्वारा हमें मालूम पड़ा है कि मान लीजिए पेट में भूख लगी, पर ये पेट को अनुभव नहीं होता है कि भूख लगी है। पेट को थोड़ी अनुभव होता है। कई बार कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है, लगता है भूख लगी है, पर पेट को अनुभव नहीं होता है कि भूख लगी है। मस्तिष्क में ये अनुभूति है, पर मस्तिष्क में भी एक अनुभव मस्तिष्क नहीं करता, ये तो साधन है, परंतु अनुभव कौन करता है उसमें? आत्मा। कई बार ऐसे होता है कि मस्तिष्क से संबंध तोड़ देते हैं, कई बार ना दाढ़ में दर्द है, सड़ गई है, निकालना है तो इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि दर्द ही नहीं होगा, वो सुन्न कर देते हैं स्थान, क्योंकि मस्तिष्क तक उसका मैसेज नहीं जाएगा। तो मस्तिष्क में अनुभूति का कक्ष है, परंतु अनुभव करने वाली जो शक्ति है, जो मस्तिष्क के द्वारा अनुभव करती है, वो आत्मा है, क्योंकि वो चेतन शक्ति है। आत्मा निकल गई शरीर को, आप क्या अनुभव कराएंगे और वो क्या वर्णन करेगा कि मैं कुछ अनुभव कर भी रहा हूं। कई लोग हमें कहते बहन जी आप आत्मा 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 कहते, पर शरीर का भी तो महत्व है। हम कहते क्यों नहीं महत्व है, उनका अपना स्थान है, जैसे गाड़ी में ड्राइवर का अपना स्थान है, गाड़ी का अपना स्थान है, दोनों एक दो के बिना बेकार है। लेकिन आप केवल गाड़ी को तो नहीं देखेंगे ना, गाड़ी में ड्राइवर होगा तभी उसका मूल्य है ना। आपको टैक्सी चाहिए, बॉम्बे जैसे शहर में टैक्सी कदम कदम पर चाहिए, कहाँ तक बसेस में ट्रैवल करेंगे, बहुत दूर कई बार जाना होता है, कई जगह बस जाती भी नहीं, तो टैक्सी लेंगे, तो हम क्या पुकारेंगे, टैक्सी टैक्सी, है ना। बस सुनता कौन है, टैक्सी थोड़ी सुनती है, सुनती है क्या? टैक्सी तो साधन है, ड्राइवर बैठा होगा तो वो सुनेगा और टैक्सी को लेकर आएगा, पर नाम तो टैक्सी पुकारेंगे ना, या रिक्शा, आजकल रिक्शाएं बहुत चलती है और शहरों में। तो ये शरीर भी एक वाहन है, साधन है, इसके अंदर अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा कैसी हूं, एक ज्योति हूं, ये इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, ये ज्योति न ये पैदा होती है न इसका नाश होगा, ये अनादि अविनाशी है। हम सब आत्माएं अनादि अविनाशी है, और इसका बहुत सुंदर उदाहरण आत्माओं का एक प्रतीक यादगार, वो जम्मू में एक मंदिर है, रघुनाथ मंदिर जम्मू में, तो वहां इस मंदिर में अनेक छोटे 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 सालीग्राम दिखाई है, पत्थर के स्लैब्स बने हुए हैं और हर कमरे में ऐसे ऐसे दिखाई है, लाखों, कोई कहते करोड़ों, किसने गिनती भी नहीं की है, नए कमरे हैं। अब ये सब आत्माओं की निशानी है, हम सब आत्माएं हैं, एक एक शरीर में एक एक आत्मा विराजमान है और हर आत्मा की भी पूजा होती है। और आत्मा पावन है, शुद्ध है, तो शरीर भी पावन और शुद्ध है, तो उसकी भी पूजा होती है, जिसके लिए भारत की संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। लेकिन ये सब रचना है, इसको अंग्रेजी में हम गॉड्स एंड गॉडेसेस कहते हैं, भगवान भगवती कहते हैं, भगवान श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता। तो भगवान भगवती माना जो भाग्यवान है, जिन्होंने भाग्य प्राप्त किया और इस प्रकृति का, इस सृष्टि का सुख प्राप्त किया। परंतु ये सब प्राप्ति कराने वाला कौन, जो स्वयं प्रकृति से परे है, जिसके लिए कहते हैं वो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो एक है, जिसको कैपिटल GOD कहेंगे, उसके पीछे S नहीं लगता है, परमात्मा कहेंगे, परमात्माएं नहीं कहेंगे, तो वो कौन। और उसका भी यादगार है, उसी मंदिर, रघुनाथ मंदिर के पास ही, दूसरी गली में शायद, एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, देखा होगा ना, अगर रघुनाथ मंदिर गए और वो शिव मंदिर नहीं गए तो यात्रा पूरी नहीं होती। बहुत बड़ा शिवलिंग है वहां, एक ही। बस थोड़ा सोचने की बात है कि आत्माएं अनेक, परमात्मा एक, इसलिए परमात्माएं नहीं कहेंगे। और परमात्मा शब्द में ही परमात्मा की पहचान है। इसी शब्द का आप संधि विच्छेद करें तो आपको दो शब्द मिलेंगे, परम प्लस आत्मा। परम और आत्मा को जोड़ दिया तो क्या बन गया, परमात्मा। व्याकरण है ये, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सुप्रीम सोल। परमात्मा भी एक आत्मा है लेकिन परमात्मा है, इतना सहज है समझना। जैसे मिनिस्टर्स अनेक हैं लेकिन एक होगा प्राइम मिनिस्टर। विधानसभा में भी सब MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, पर एक होगा चीफ मिनिस्टर। अनेक कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, लेकिन एक होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वो एक ही होगा। तो आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। अगर ये बात हम समझ जाएं तो परमात्मा को पहचानना मुश्किल नहीं है। आत्म अनुभूति परमात्मा अनुभूति का पहला कदम है। परंतु कई लोग इसको उल्टे रूप से लेते हैं, वो समझते नहीं इसका क्या राज है, और वो क्या समझते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे कह देते हैं कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। अब यहां हमें समझना होगा, जब परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, उनके कर्तव्यों को पहचानेंगे, उनके गुणों को पहचानेंगे, तो महसूस करेंगे उनकी परम शक्ति को, क्योंकि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मनुष्य ये भी नहीं समझता, उसका स्वरूप क्या है वो तो समझ ही नहीं पा रहा है, वो कहाँ है ये भी नहीं समझ पा रहा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता ये भी नहीं समझ पा रहा है, इसके कारण कितने सारे मंतव्य संसार में ईश्वर के बारे में हो गए हैं। कोई कह देगा आत्मा ही परमात्मा है, कोई कह देगा आत्मा तो उसका अंश है, टुकड़ा है, कोई कह देगा कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, पत्थर भीतर सब में है, कण कण में है, कोई कह देगा कि सब नाम रूप उसी के ही है, कोई कह देगा कि उसका कोई नाम रूप ही नहीं है, और यहाँ तक भी कोई कह देते हैं कि ईश्वर विश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं कहने वाले। तो जितने मुंह उतनी बातें ईश्वर के बारे में क्यों है? सबसे पहला कारण है कि इन आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। सबसे पहला कारण, अगर आंखों से देख सकते होते तो इतनी सारी बातें नहीं होती। जैसे हाथी का एक मिसाल दिया जाता है कि पांच नेत्रहीन व्यक्ति थे, उनको जाके कहा गया कि जाओ चिड़िया घर में अनुभव करके और हाथी कैसा होता है, मिसाल है। तो हाथी का अनुभव करने के लिए कभी दिखाई तो उन्हें देता नहीं था, तो किसने उसकी पूंछ पकड़ी, किसने उसकी सूंड पकड़ी, किसी ने उसके कान पकड़े, किसी ने उसकी टांगे पकड़ी, किसी ने उसका पेट पकड़ा। अब हर एक ने अपनी अपनी तरफ से अनुभव कर लिया। जब वापस आए तो जो उनकी अल्प समझ थी, जो उन्होंने अनुभव किया अपने हिसाब से, और जहां तक उनको ज्ञान था उसी अनुसार उन्होंने जवाब दिया। एक ने कहा हाथी तो एक पंखे जैसा था, क्योंकि उसके कान पकड़ लिए, वो हिल रहे थे हाथ पंखे की तरह। दूसरे ने उसकी सूंड पकड़ ली, वो सांप की तरह हिल रही थी, तो कहा वो तो सांप जैसा था। तीसरे ने कहा कि उसकी वो तो रस्सी जैसा था कि पूंछ पकड़ ली पतली पतली। चौथे ने कहा नहीं, वो तो दीवार जैसा था क्योंकि उसका पेट पकड़ लिया। पांचवे ने कहा कि तो खंभे जैसा था क्योंकि उसके टांगे पकड़ ली। अब हाथी कैसा था? कोई कहे पांचों जैसा था, ये भी सही नहीं है, क्योंकि केवल एक कान ही थे, वो भी कोई पंख का काम थोड़ी करते, वो तो केवल उनके, चलो उनके लिए हाथी के लिए पंख का काम करते होंगे, कोई मक्खी वगी बैठी तो हिला देते होंगे, परंतु दूसरों के लिए थोड़ी वो पंखा का काम करेंगे, या दीवार का काम, या सांप का काम, या रस्सी का काम। तो हाथी कैसा है ये तो वास्तव में पांचों ही गलत है। तो परमात्मा को इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते, पर जैसी जैसी जिसकी भावना है ना, उस अनुसार उस भावना का भाड़ा मिल जाता है। कभी दर्शन हो जाते हैं, कोई हनुमान का भक्त होगा तो हनुमान का दर्शन हो गया, कोई देवी का भक्त होगा देवी का दर्शन हो गया, कोई गणेश जी का भक्त होगा तो गणेश जी का दर्शन हो गया, कोई क्राइस्ट को मानने वाला होगा तो उसमें से क्राइस्ट का ही दर्शन हो जाएगा। जैसी भावना होती है वैसा ही उसे फल मिलता है, परंतु उसका सत्य स्वरूप तो कुछ और ही होगा ना। क्योंकि भगवान के ये भी महावाक्य है, जो भूतों के उपासक है वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो मेरे उपासक है वो, जो देवों के उपासक है वो देवों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे उपासक है वो मुझे प्राप्त होते हैं। अपने को सर्वोच्च रखा, हर बात में सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्तम। तो वो सर्वोत्तम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति कौन सी है, उसको हमें समझना होगा। और वो एक ही है, इसीलिए परमात्मा एक है, वो सत्य है। जो चीज बदलती रहती है वो सत्य नहीं मानी जाती है। अध्यात्म की भाषा में जो चीज अस्थिर है वो असत्य है। हालांकि विज्ञान की भाषा में जो चीज दिखाई देती है वो सत्य है, पर अध्यात्म की भाषा में जो चीज दिखाई देती है वो सब अस्थिर है, इसलिए वो सत्य है। इसलिए कई बार अध्यात्म और विज्ञान का झगड़ा होता है, परंतु दोनों को मिला सकते हैं हम, कि सत्य केवल स्थिर चीज नहीं है, वो तो है ही है, स्थिर जो है वो सत्य है, पर स्थिर के साथ अविनाशी भी चाहिए। अगर वो अविनाशी नहीं है तो वो सत्य नहीं है। प्रकृति के अंदर हर वस्तु जो बनी है वो विनाशी है, पर पांच तत्व तो अविनाशी है ना। उसमें से जो चीज बनी है फिर वो बिगड़ती है, वो तत्वों में विलीन हो गई, वो रूप सामने से खत्म हो जाएगा, पर तत्व तो फिर भी अविनाशी है। तो उस हिसाब से प्रकृति भी सत्य है, लेकिन वो परिवर्तनशील है। और परमात्मा को जब सत्य कहते हैं तो वो अविनाशी तो है ही है, लेकिन साथ साथ अपरिवर्तनशील भी है। और उन दोनों के बीच में आत्मा है जो अपरिवर्तनशील है, अर्थात जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, कोई भी बाह्य प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तन नहीं आता आत्मा में। किसी व्यक्ति को जिंदा जला दो तो शरीर तो जल जाएगा, आत्मा थोड़ी जलेगी, लेकिन आत्मा पुण्य आत्मा भी बनती है, पापात्मा भी बनती है, धर्मात्मा भी बनती है, देवात्मा भी बनती है, क्योंकि प्रकृति के प्रभाव में आती है। आत्मा है, आत्मा है, लेकिन प्रकृति के प्रभाव में आ गई तो पाप आत्मा भी बन जाती है, इंद्रियों के वशीभूत हो जाती है, और परमात्मा के प्रभाव में आ जाए तो देवात्मा भी बन जाती है। संग का रंग लगता है, वो संग के में फंस जाती है आत्मा। इसीलिए कहा गया जैसा संग वैसा रंग। परमात्मा किसी के संग में नहीं फंसता, इसीलिए उनका संग को बहुत सुंदर नाम देते हैं, सत्संग, है ना। परमात्मा के संग को कौन सा संग कहते हैं? सत्संग। सत्संग तारे कुसंग डुबोए। तो आत्मा को कुसंग मिला तो डूब जाती है, माना आत्मा अपने आप को भूल जाती है, अपनी भाग्य से वंचित हो जाती है, अपना ही शत्रु बन जाती है। इसलिए कहते आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, क्योंकि पाप कर्म के अधीन हो जाती है। लेकिन जब अधीन हो गई, डूबने लगी, तो फिर बचाने वाला एक है। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? कहते जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सत्य की नाव डोलती है पर डूबती कभी नहीं है। जिसको परमात्मा का साथ है वो सत्यवादी है, और उस व्यक्ति की नाव कभी डूब नहीं सकती, वो जीवन से पार हो ही जाएगा, मुक्ति जरूर मिलेगी उसे। अर्थात परमात्मा को सच्चा साथी अगर बना लिया तो आपका जीवन पार हो ही जाएगा, निश्चिंत रहेंगे आप। परंतु आवश्यकता उसके साथ को समझने की, उसको पहचानने की, और उस पहचान के आधार पर विश्वास रखने की। कई लोग विश्वास तो रखते हैं ईश्वर पर, लेकिन अंधविश्वास के रूप में, जिसने जो कह दिया, कहीं से भी कुछ मिल जाए बस तिनके का सहारा ही सही। इसीलिए जिसने जो कहा बस वो ही करने लग पड़ते हैं। जैसे पेट में दर्द किसी को हुआ तो किसने का अजवाइन खाओ, किसने का अर्क पियो, किसने का ये करो, किसने का वो करो, सौ लोगों सौ बातें कहेंगे, परंतु होता क्या है, ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता ही गया। पेट दर्द हुआ किस लिए पता नहीं है, कारण तो कुछ और ही होगा, तो जड़ तक तो गए नहीं, और सौ लोगों ने सौ बातें कह दी, सब ले लिया, पर बीमारी तो और भी बढ़ जाती है। तो ईश्वर कौन है उसकी सत्य पहचान न होने के कारण, उनको इन आंखों से नहीं देख सकने के कारण, अपनी भावना का उनके सामने जो स्वरूप आता उसी में वो फंस जाते हैं, जो अल्प उन्हें प्राप्ति होती उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए कहा चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो परमात्मा कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूँ, क्योंकि परमात्मा की पहचान मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। जो खुद को ही नहीं पहचानती वो परमात्मा की पहचान क्या देगी। एक भूला भटका बच्चा अपने घर से रास्ता भूल गया, उससे पूछो तुम कौन हो, उसको अपना ही नाम मालूम नहीं, डैडी का नाम क्या मालूम होगा, घर का पता क्या होगा, अपने बारे में नहीं जानता है। तो बच्चा खुद नहीं घर तक पहुंच जाएगा, वो तो भूल गया रास्ता, लेकिन पिता ही उसे ढूंढ कर निकालेगा, ले आएगा घर वापस, है ना। कई बार माता पिता रेडियो में, टीवी पर, अखबारों में लिखवाते हैं गुमशुमा की तलाश, बच्चा गुम हो गया। तो परमात्मा कहते हैं मेरे सब बच्चे गुम हो गए, संसार में आकर के अपने आप को भूल गए, भूल भुलैया में भटक गए, फंस गए, इस भंवर में फंस गए। इसीलिए परमात्मा को क्या कहा जाता है, खिवैया, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर। अंग्रेजी में बड़े सुंदर शब्द है, लिबरेटर, गाइड, रिडीमर, सेवियर। जैसे कोई जहाज डूबने पर होता है तो उसके अंदर बैठे हुए यात्री वो भी डूब रहे होते हैं, तो वो यात्री यात्री को क्या बचाएंगे जो डूब रहे हैं, वो जहाज क्या बचाएगा जो डूब रहा है जहाज। पर बचाने वाला जहाज दूसरा आता है, और रेस्क्यू शिप के रूप में बचाने वाले दूसरे आते हैं और वो डूबने वालों को बचाते हैं। इसीलिए परमात्मा को ही हम पुकारते, हे प्रभु मेरी नैया को पार करो। अब वो प्रभु अपना वायदा निभाते हैं, और क्या है उनका वायदा, कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आकर के अधर्म का नाश करता हूँ और सत धर्म की स्थापना करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये ईश्वर का वायदा है। और परमात्मा अपने वायदे अनुसार कैसे उद्धार करते हैं, अपनी पहचान दे करके। और हम इस निश्चय से कहते हैं अभी कि परमात्मा ने वो पहचान हमें दी है, पिताश्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें दी है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा को हम परमात्मा नहीं मानते, न कहीं न कभी उन्हें गुरु भी कहते हैं, लेकिन वो हमारे अलौकिक पिता हैं, और आत्माओं का पिता पारलौकिक पिता है। शरीर के पिता को तो सब जानते हैं, आत्मा के पिता को कोई नहीं जानता। वो पारलौकिक पिता है जो अपनी पहचान खुद देते हैं, अलौकिक पिता के द्वारा अपनी पहचान देते हैं, जिनके द्वारा हमने नया जन्म लिया है, हम अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो परमात्मा अब नई सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे हैं, और जिनके द्वारा कर रहे हैं उनका नाम रखा है पिताश्री ब्रह्मा। कई कहते हैं ये ब्रह्मा कैसे हो गया, ब्रह्मा को तो चार मुख दिखाते हैं, अलग ही रूप दिखाते हैं। वो यादगार जरूर है, लेकिन कब ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में नई रचना रची ये तो किसी को पता ही नहीं, वो अभी वास्तव में हो रहा है। और परमात्मा अपनी पहचान उनके द्वारा दे रहे हैं, वो आपको मैं सुनाना चाहूंगी। तो पहले पहले हम ये देखेंगे कि परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या होगा, फिर देखेंगे वो कहाँ है, और फिर देखेंगे वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो पहली बात है कि क्या उनका स्वरूप है। हम देख रहे हैं ईश्वर के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में भी जो इतनी मते हैं, उसके कारण भी मनुष्य भगवान से दूर हो गया है। इसलिए कई लोग समझते हैं कि जो कुछ हम परमात्मा का न नाम है, न रूप है, न गुण है, न धाम है, कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आखिर के नकारते 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 कहते बाकी जो बच जाए वो ईश्वर है। अब ये सही तरीका नहीं है ईश्वर को पहचानने का। अगर नाक पर हाथ रखना है तो सीधा रखेंगे ना, घुमा करके क्यों रखेंगे। क्योंकि परमात्मा का सत्य स्वरूप अवश्य प्रकृति के भेंट में हम उनकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति जैसा उनका कोई स्वरूप नहीं है, परंतु अपना निजी स्वरूप तो होगा ना। अब वो उनका स्वरूप क्या, इसीलिए उन्हें जब निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, निरंजन कहते हैं, तो प्रकृति की भेंट में ये कहा गया है। कई लोग इस बात को न समझने के कारण निराकार, निर्गुण, निरंजन आदि को केवल निर्लेप स्थिति तक ले जाते, नहीं है, नहीं है के रूप में ले जाते हैं, और उनके असली स्वरूप से वंचित हो जाते हैं। जैसे निराकार शब्द का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि नहीं आकार, तो प्रकृति जैसा उनका आकार नहीं है। प्रकृति की कोई भी वस्तु चीज से हम परमात्मा की भेंट नहीं कर सकते हैं, ये तो समझ सकते हैं हम। तो फिर उसका स्वरूप क्या है, इसलिए हम कहते हैं एक शब्द में उनके स्वरूप की पहचान है, और वो शब्द है परमात्मा। वो भी एक आत्मा है, जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। फिर उसे निराकार क्यों कहा है, वो ज्योति स्वरूप तो है उसका रूप, पर निराकार क्यों कहा है, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप प्रकृति जैसी ज्योति नहीं है। परमात्मा को हम क्या कहते हैं, जागती ज्योति, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, गुरु नानक ने उसकी महिमा की गुरवाणी में सारी उसी निराकार की महिमा है, जिसको क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट लीड मी दाई काइंडली लाइट, मोहम्मद ने कहा नूरानी नूर रूहानी रूह। तो वो नूर कहो लाइट कहो ज्योति कहो, वो किसकी यादगार है, उसी परमात्मा की यादगार है। लेकिन जब हम उसे परम कहते हैं तो उसके पीछे बहुत राज है। परम का मतलब है सबसे ऊंचा। जब हमने कहा त्वमेव माताश्य पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इसका भाव क्या है कि तुम वो मात पिता हो जिसका कोई मात पिता उसके ऊपर नहीं है। लौकिक में मात पिता हमसे ऊंचे हैं, परंतु उनके भी कोई मात पिता है। जिनको हम माता पिता कहते हैं उनको कोई बेटा भी कहता है, बच्चा भी कहता है, क्योंकि उनके भी माता पिता है। लेकिन उनका ऐसा कोई मात पिता जिसका कोई मात पिता न हो, वो परमात्मा। हमारा शिक्षक हमसे सदा ही ऊंचा है, जैसे माता पिता का ऋण कभी चुकता नहीं हम कर सकते जीवन भर, वैसे शिक्षक का ऋण भी कभी चुकता नहीं कर सकते जीवन भर। हमारे प्राइमरी स्कूल का टीचर सदा ही हमारा टीचर होगा, चाहे हम कितने भी बड़े प्रिंसिपल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी क्यों न बन जाए, प्राइमरी स्कूल के टीचर को मैं अभी भी सर कहूंगी, है ना। इसीलिए वो शिक्षक सदा ही शिक्षक है मेरा, मेरा गुरु सदा ही मेरा गुरु है। चाहे मैं कितनी बड़ी गुरु बन जाऊं, लाखों शिष्य मेरे हो, पर मेरे गुरु के आगे मैं शिष्य ही कहलाऊंगी। तो माता पिता शिक्षक और गुरु, ये तीन ऐसे संबंध है जीवन में जो सदा हमसे ऊंचे हैं, और परमात्मा वो है जिनके ऊपर ये तीन संबंध है ही नहीं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहा है। तो परमात्मा की क्या पहचान है, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। निराकार का अर्थ ये नहीं कि कोई भी स्वरूप नहीं, लेकिन निराकार का अर्थ ये है कि वो स्वरूप जो प्रकृति के किसी भी चीज से भेंट नहीं कर सकते हैं। और एक वाक्य में उस स्वरूप की पहचान दे सकते हैं। वाक्य तो शब्द तो भाषा में आएंगे ही, कि रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु। प्रकृति की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बिंदु में सिंधु जितनी शक्ति हो। एक परमाणु बिंदु की तरह है, उसमें भी बहुत शक्ति है लेकिन उसकी भी माप है। आइंस्टाइन ने उसकी माप की E=mc², मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट से गुणा करके, उसकी फिर भी एनर्जी की लिमिट दे दी, और मास की भी लिमिट है उसकी भी कोई गिनती बता सकता है। लेकिन परमात्मा का वो स्वरूप है जो मापा नहीं जा सकता, न उनके स्वरूप की माप हो सकती न उनकी शक्ति की माप हो सकती है। इसीलिए कहा बिंदु में सिंधु, सिंधु क्यों कहा? क्योंकि सिंधु सागर के अंदर अथाह जल है। चलो उस जल को भी कोई माप ले, कितने लीटर जल है, माप भी सकता है, लेकिन परमात्मा की शक्ति की माप नहीं कोई कर सकता। कई बार परमात्मा की शक्ति की तुलना सूर्य से करते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटिया, ज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा सूर्य जब प्रगट हो तो अंधेरा नाश हो जाता है, जैसे सूर्योदय हुआ रोशनी ही रोशनी। परमात्मा की भेंट सूर्य की शक्ति से, लेकिन फिर भी विज्ञान उसकी शक्ति को भी माप सकता है। आज वहां तक भी पहुंच गया है सूर्य, कितनी उसमें ऊर्जा है वो माप सकता है, लेकिन परमात्मा की शक्ति उनसे भी बेअंत है। तो वास्तव में निराकार का अर्थ क्या हुआ? जो स्वरूप प्राकृतिक नहीं है, लेकिन अपना निजी आकार तो है उनका, और उसी स्वरूप को नाम भी दिया है, जिसको नाम दिया सदा शिव। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा अभिप्राय शंकर से नहीं है। कई लोग इसलिए भी मुंह जाते कहते, एक तरफ तो आप कहते हो कि उनका कोई प्राकृतिक नाम रूप नहीं है, तो शिव कहा तो वो शंकर की आकृति तो है। हम कहते नहीं, जब हम शिव कहते हैं हमारा अभिप्राय उस सत्यम शिवम सुंदरम से है, जिसके लिए हम कहते हैं ओम नमो शिवाय। शंकर के लिए तो फिर भी कहेंगे शंकर देवताए नमः, उनको महादेव कहेंगे, लेकिन परमात्मा तो देवों के भी देव है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, केवल महादेव नहीं, शंकर को तो विनाशकारी बताते हैं, वो भी तपस्वी रूप में दिखाते हैं। अगर उसकी कोई तपस्या भंग कर दे और वो तीसरा नेत्र खोले तो जहां देखे भस्म कर दे। अब शिव तो भोलानाथ है, कहां भोलानाथ और कहां भस्म करने वाला, कितना अंतर हो गया। तो यहां मनुष्य मूंज गए कि आखिर ईश्वर कौन है। तो हम कहते हैं मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि शंकर को भी ध्यान की अवस्था में दिखाते हैं, तो वो किसका ध्यान कर रहा है? कभी ये सोचा हम लोगों ने? मैं छोटी थी तो अपनी माँ से पूछती थी, वो शंकर की भक्ति करती थी, बचपन में मैं देखती थी उनको, और उनके आगे सदा शिवलिंग भी रहता था, तो मैं माँ से पूछती थी, माँ शंकर किसका ध्यान कर रहा है? तो वो कहती थी राम का ध्यान कर रहा है। तो एक दिन हम रामेश्वर हमें ले गई, तो हमने वहां देखा कि राम भी शिव का ध्यान कर रहा है। तो राम को भी तपस्या में दिखाया श्री राम, तो मैंने कहा वो किसका ध्यान कर रहा है? तो कहा वो शिव का ध्यान कर रहा है। अब राम शिव का ध्यान कर रहा है और शंकर राम का ध्यान कर रहा है, तो कौन से राम का ध्यान कर रहा है? अब यहां मुझ गए, उसको भी समझ में नहीं आया। तो जब इस संस्था में आई तब हमें पता चला, मेरी मदर को भी पता चला कि वास्तव में जब हम राम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, जिसका ध्यान शंकर कर रहा है, और राम शिव का ध्यान कर रहा है तो वो कौन से शिव का ध्यान कर रहा है? वास्तव में वही राम वही शिव उसी ज्योति स्वरूप को कहेंगे, जिसका श्री राम भी ध्यान कर रहा है। इसीलिए राम भी कई बता दिए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट वासा, आत्मा भी ज्योति तो है ना, प्रकाश तो है, परमात्मा की संतान तो है। एक राम जो सकल पसारा, ब्रह्मा को भी परमात्मा की श्रेष्ठ रचना तो कहेंगे, और एक राम जो जग से न्यारा, वो भी राम है जो सबके दिल में रम रहा है, वो निराकार स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप, जिसको श्री राम ने भी याद किया और उनसे शक्ति प्राप्त की रावण पर विजय पाने के लिए, जिसे देवताओं ने शक्ति प्राप्त की देव पद को प्राप्त करने के लिए, या असुरों का नाश करने के लिए, जैसे शास्त्रों में वर्णित है, उसके पीछे राज है कि वो एक कौन जो देवों का भी देव है, जिसको सभी धर्म पिताओं ने भी याद किया, यहाँ तक कि बुद्ध और महावीर ने भी याद किया, गुरु नानक क्राइस्ट और मोहम्मद ने तो याद किया ही, पर बुद्ध और महावीर, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक ईश्वरवाद नहीं है, परंतु महात्मा बुद्ध ने भी वो बोध किसको याद करके प्राप्त किया? महावीर भी, महावीर कैसे बना? पहले तो दोनों राजकुमार थे, तो वो महावीरता, वो शक्ति कैसे पाई? किसका ध्यान करके? वो एक कौन? अब उसको हमें याद करना है, उसको पहचान कर उनका ध्यान करना है, और वो पहचान परमात्मा खुद ही आकर के देते हैं। तो क्या पहचान दी, हम आपको पांच बातों में बताएंगे। बहुत सहज है उसे समझना। जैसे आपके पास सोना कोई देके जाए और कहे जरा पता तो करो ये इसमें सच्चा कितना है, कितनी परसेंटेज इसमें खाद है, सच्चाई कितनी है, तो सोनार क्या करता है, उसको कसौटी पर रगड़ता है ना, घिसता है, जिससे उसको पता चलता है कि इसमें सोना कितना है। विज्ञान में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो प्रैक्टिकल्स करते थे केमिस्ट्री में, मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, जय हिंद कॉलेज से बीएससी किया मैंने, तो हमको याद है हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स करते थे या फिजिक्स प्रैक्टिकल्स भी करते थे, तो हमें कोई चीज मिलती थी, हमें बस पूछा जाता था कि आप ये बताइए ये क्या है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब देख करके फिर उस वो किस धातु से लगते थे उसके अनुसार बताते थे ये किस चीज क्या है, कि उसका पूर्व ज्ञान होता है, तो इसको कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, जो हम जानते हैं उसके आधार पर जो नहीं जानते हैं उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो परमात्मा के विषय में हम क्या जानते हैं? जैसे व्यक्ति के विषय में कुछ जानकारी रखते हैं तो हम उसको पहचान लेंगे। समझो कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, हम कैसे समझे ये डॉक्टर? पे ललाट पर लिखा हुआ है क्या ये डॉक्टर है? मेरे सामने तो कुछ भी प्रूफ नहीं है, तो वो प्रूफ दिखाता है, उसके पास मेडिकल नॉलेज है, दवाइयों का ज्ञान है, बीमारियों का ज्ञान है, सर्टिफिकेट भी दिखाएगा, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, और उसके कई पेशेंट्स है जिनकी उसने दवाई की है, उनको शफा मिली है, कहूंगी हाँ ये ठीक है, मुझे विश्वास होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा के लिए भी आज कई कहते हैं कि तुम्हें ही भगवान हूं, कितने आज भगवान बन के बैठे हैं दुनिया के अंदर। तो क्या पहचान है परमात्मा की? तो पांच बातें हैं, ये कसौटी है, आप इसके आधार पर पता कर सकते हो कि कितनी सच्चाई है। परमात्मा हम उसे ही कहेंगे जो सभी धर्मों को स्वीकार्य हो, जिसका स्वरूप ऐसे नहीं कि एक धर्म को स्वीकार्य हो दूसरे धर्म को नहीं, और एक धर्म में भी मतभेद हो तो फिर वो क्या परमात्मा हुआ? एक ही धर्म में मतभेद हो तो झगड़ा ही हो जाए आपस में, मेरा भगवान और तेरा भगवान, कितने भगवान है, एक है ना, तो एक के लिए अनेक मतभेद क्यों? तो वही स्वरूप जो सर्व धर्मों को मान्य हो, और वो कोई भी दैहिक स्वरूप हो ही नहीं सकता है, असंभव। तो क्राइस्ट ने जिसको याद किया, गुरु नानक ने याद किया, मोहम्मद ने याद किया, महावीर ने याद किया, महात्मा बुद्ध ने याद किया, देवताओं ने याद किया, वो एक ही ज्योति स्वरूप है, जिसकी ही यादगार भारत के अंदर शिवलिंग के नाम से पाई गई है। कई कहते हैं ये अर्थ न जानने के कारण कि लिंग का अर्थ क्या है, तो वो कोई पुलिंग से ले लेते हैं, समझते स्त्रियों को उसकी पूजा करना निषेध है। वास्तव में लिंग का यह अर्थ है चिन्ह, निशानी, सिंबल इंग्लिश में कहेंगे। तो ज्योति का चिन्ह आप कैसे प्रकट करेंगे, उसको कैसे वर्णन करेंगे, कैसे दर्शाएंगे? एक अंगुष्ठाकार रूप में, ये ज्योति का प्रतीक है। इसीलिए जो सबसे प्राचीन मंदिर भारत के हैं वो ज्योतिर्लिंगम मठ कहलाए जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने ऊपर विश्वनाथ नाम रखवा ले तो विश्वनाथ हो जाएगा क्या? व्यक्ति भी अपने ऊपर नाम रखवाते विश्वनाथ, और हो सकता है उसको एक झोपड़ी भी नसीब न हो और नाम है विश्वनाथ, होता है। तो मनुष्यों के तो संज्ञावाचक नाम होते हैं ना, लेकिन परमात्मा का तो गुणवाचक नाम है। कोई अमरनाथ भी नाम रखवा ले और एक दिन कहने में आएगा अमरनाथ जी चल बसे, किसकी अर्थी जा रही? अमरनाथ जी की अर्थी जा रही है। देखो भाई अमरनाथ जी भी मर गए। वो कहानी आती ना, एक व्यक्ति था उसका नाम था छज्जूमल, सुनिए कहानी। तो शादी जब हुई तो सब उसको छज्जू छज्जू पुकारते थे, बचपन से ये नाम रखा था। तो पत्नी ने कहा ये नाम अच्छा नहीं है, छज्जू क्या नाम होता है क्या? तो जब अच्छा नाम को दुनिया में मिला ही नहीं, क्या छज्जू नाम रख लिया। तो गया ढूंढने दुनिया में अच्छा नाम कौन सा होता है, तो देखा कि एक व्यक्ति की ये जा रही थी। तो बोला ये किसकी कौन कौन मर गए? बोला अमरनाथ जी मर गए। फिर देखा एक बूढ़ी औरत गरीब भिखारिन बिचारी, गरीब थी पर वो उखली कूट रही थी, गरीब थी। तो पूछा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम लक्ष्मी है। बोला लक्ष्मी और इतनी गरीब और उखली कूट रही है, लक्ष्मी तो विश्व की महारानी होनी चाहिए। फिर देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है, तो पूछा आपका नाम क्या है? बोला धनपत राय। तो क्या ये क्या लक्ष्मी कूटे उखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ भी मर गया, तो मेरा छज्जू नाम है ठीक, क्योंकि कम से कम इसका भले अर्थ नहीं है पर अनर्थ भी तो नहीं है ना। छज्जू का भी अर्थ थोड़ी होता है पर अनर्थ भी तो नहीं है ना। नाम धनपत राय हो और एक कौड़ी भी नहीं उसके पास। तो इसीलिए मनुष्यों के जो नाम होते हैं वो संज्ञावाचक है, गुणवाचक कोई विरले होते हैं, कोई विरले। एक व्यक्ति था उसका नाम था शिव राम कृष्ण भाई, तीनों ही नाम उसके शिव राम कृष्ण, और बड़ा नशा था उसको, मेरा नाम शिव राम कृष्ण है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है, नशा भी था उसको अपने नाम का। तो मैंने कहा इतना अच्छा नाम है तो गुण भी होंगे वो आपको शिव के राम के कृष्ण के। बोलता बहन जी शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि नाम कहाँ गुण कहाँ, गुण कहाँ है उन जैसे। तो गुण नहीं केवल नाम रख दिया तो नाम तो बदनाम कर दिया ना, बदनामी हो गया ना नाम। पर कोई शिव रखवा ले तो क्या शिव के गुण आ गए? जिसी को निराकार का। दूसरा परमात्मा का वही स्वरूप है जो इस दुनिया के अंदर जो भी सापेक्षता है ना, जो भी जितनी भी सापेक्षता है, जन्म मरण कर्म फल पाप पुण्य सुख दुख हानि लाभ जय पराजय निंदा स्तुति दिन रात स्वर्ग नर्क, ये सब इस दुनिया की सापेक्षता में आता है। इसीलिए कहते हैं एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड, हर चीज किसी न किसी चीज से भेंट की के भेंट में कही जाती है, उसका स्वभाव उनका स्वरूप। जैसे ये हॉल बड़ा है क्योंकि किसी छोटे की भेंट में, पर किसी बड़े की भेंट में तो ये छोटा है। तो परमात्मा को हम क्या कहते हैं? निरंजन। निरंजन का मतलब है कि इस संसार की सापेक्षता से परे। निरंजन माना अलग, निरंजन कहते ना वो सबसे न्यारा, न्यारा माना अजन्मा अकर्ता अभोक्ता, दुख सुख से न्यारा। सारे जितने भी संसार की सापेक्षता है उन सब से न्यारा। इसलिए कहते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, ईश्वर की गत और मति वही जानता है क्योंकि वो सबसे न्यारा है। परमात्मा की किसी भी देह रूप से भेंट की नहीं जा सकती क्योंकि उनका अपना कोई देह रूप है ही नहीं, इसलिए कहा ज्योति स्वरूप। तीसरी बात, परमात्मा हम उसे ही कहेंगे जो सभी संबंधों में सर्वोच्च है, इसीलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। उनका कोई रचयिता नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि तीन चीजें अनादि और अविनाशी है, परमात्मा आत्मा और प्रकृति, ये तीनों को किसी ने पैदा नहीं किया है। इसलिए उस परमात्मा को हम क्या कहते हैं? स्वयंभू, सेल्फ, स्वयं प्रकट होते हैं। प्रकट होना माना अपने समय पर सृष्टि पर आते हैं, जब जब उनका कार्य होता है, उनका भी अपना धाम है ना। इसलिए परमात्मा को निरंजन कहा, और सबसे ऊंचा कहा, त्वमेव सर्वम मम देव देव कहा। उनके कर्तव्यों के आधार पर उनके साथ संबंध है हमारे। ऐसे नहीं कि पैदा किया आत्माओं को, नहीं, न सृष्टि को पैदा किया, ये भी अनादि अविनाशी है, लेकिन क्यों परमात्मा को पिता कहते हैं? जैसे बंबई का जो मेयर है उनको सिटी फादर कहते हैं, तो सिटी फादर क्यों कहते हैं? ऐसे थोड़ी कि बंबई शहर को पैदा किया। बापू गांधी जी को हम बापू कहते थे, फादर ऑफ द नेशन, तो बापू कैसे बना? भारत को पैदा थोड़ी किया, भारत तो पहले से ही था, लेकिन फिर भी पिता क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि पिता तुल्य उनके उनके कर्म हुए, जो अंग्रेजों से हमें स्वतंत्र किया, भारत को स्वतंत्र बनाया। सिटी मेयर इसीलिए कहते हैं फादर, सिटी फादर, क्योंकि वो चेयरमैन होता है म्युनिसिपैलिटी का, शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, इसलिए वो म्युनिसिपैलिटी का हेड है, चेयरमैन, मेयर शहर का, तो शहर की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। तो हम आत्माओं की जिम्मेदारी है जरूर परमात्मा के ऊपर, लेकिन अपने समय पर वो करते हैं, हर वक्त नहीं करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का कार्य हर वक्त नहीं है, परंतु कहीं अराजकता आ गई, कोई कुछ आ गया, चलो डिसॉल्व कर दो असेंबली, प्रेसिडेंट रूल ला दिया, नहीं तो प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं करता। परमात्मा हम उसे ही कहेंगे जो सर्व गुणों का दाता है, जो कभी किसी से लेता नहीं है। देहधारी व्यक्ति कभी भी दाता नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। सबसे पहले तो शरीर ही कितना लेता है, नहीं, सुबह से लेकर रात्रि तक शरीर को कितना देना पड़ता है, मालिश भी करो, नहलाओ धुलाओ, भोजन खिलाओ, आराम दो, सब शरीर के लिए, सारा जीवन ही कई लोग अपने शरीर के लिए दे देते हैं, सारा जीवन। तो कितना लेता है ये शरीर, आउटपुट कितना है, इससे काम कितना होता है नाम का, और वो तो सदा ही दाता है, तो देहधारी कैसे होगा, तो सोचने की बात है। तो परमात्मा किस रूप में दाता है? गुणों का दाता है, इसलिए उनकी स्तुति सागर से की गई है। वास्तव में सागर भी उनके लिए कम पड़ता है शब्द, पर फिर भी सागर अथाह होता है उसकी भेंट में, तो चलो सागर और सूर्य, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, इतनी महिमा ईश्वर की, जो कहा जाता सागर स्याही बन जाए, पेड़ कलम हो जाए, पृथ्वी कागज हो जाए, और सरस्वती विद्या की देवी उसकी स्तुति लिखे तो भी पूरी नहीं होगी, इतनी अपरम अपार महिमा है उनकी। किनकी, किसकी? हमारे प्यारे शिव पिता की। हम उनको शिव पिता कहते हैं, और अति स्नेह से शिव बाबा कहते हैं। अब वो शिव पिता जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, सर्व धर्मों के पिता हैं, उनके महावाक्य हैं, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब इन देह के धर्मों को त्याग करो और मेरी शरण में आओ। आज मनुष्य देह के धर्मों में फंस गया है और लड़ झगड़ रहा है, मेरा तेरे में फंस गया है। अब कैसे इनसे निकले, छूटे, एक कैसे हो सके, जिसको हम भारत में कहते यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता है भारत के अंदर, अनेक भाषा, जाति, प्रांत, संस्कृतियां, न जाने क्या क्या सब भारत में समा गई है, लेकिन इन सब के पीछे एकता कैसे हो, उसके लिए एक से संबंध जोड़ना होगा। जैसे अनेक सुइयां हमारी, समझो मेरे पास थी और गिर गई, चारों तरफ बिखर गई, अब सब एक एक सुई को इकट्ठा करने जाएंगे तो हाथ में लगेगा, लगेगी, कांटा चुभेगा, सुई चुभेगी, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सब सुइयों को इकट्ठा करने का, कौन सा तरीका है? एक चुंबक रख दो, तो वो चुंबक क्या करेगा, सब सुइयों को एक कर देगा, एक एक सुई एक एक टेम्पररी चुंबक मैग्नेट बन जाएगी और वो भी आकर्षित करेगी, सब एक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो आज क्यों सब बिखर गए, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा को सब भूल गए, इसलिए राजयोग वो योग है जिसके द्वारा हम एक को पहचान करके उनके साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं। तो कई हमसे कहते हैं बहन जी वो तो बात ठीक है एक से जोड़ो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बीच में माध्यम तो चाहिए ना। हम कहते हैं हाँ माध्यम तब तक चाहिए जब तक उसको पहचाना नहीं है, पर एक बार पहचान मिल गई और उनसे संबंध जोड़ने की विधि बता दी और जोड़ दिया कि आपका उनसे अनादि अविनाशी संबंध है, हर जन्म में आपने उसको याद किया है, तो फिर उनसे फिर से संबंध जोड़ने में कठिनाई किस बात की? उनसे योग लगाना क्यों मुश्किल होना चाहिए? तो कई कहते माध्यम तो चाहिए, हम कहते हैं माध्यम तब तक चाहिए जब तक ये संबंध नहीं जुड़ा है। पर समझ मिली, योग की पहचान मिल गई, तो फिर तो संबंध जुड़ते ही अपने आप में कनेक्शन हो जाना चाहिए ना, फिर बीच में माध्यम की क्या जरूरत है? जैसे ब्राह्मण कब तक चाहिए? जब तक सगाई नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है। एक बार वर और वधु का हथियाला बांध दिया, संबंध हो गया, वायदे हो गए, उसके बाद हाँ? फिर उसके बाद अगर वधु वर को याद करने की बजाय ब्राह्मण को याद करना शुरू कर दे तो क्या होगा? वाताओ माताएं, आप जिसने आपकी शादी कराई थी वो ब्राह्मण के फोटो की पूजा कर लो, कैसे होगा? तो अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए वायदा जिसने करवाया वो तो हो गया, उसका काम पूरा हो गया, उसके बाद संबंध तो डायरेक्ट चाहिए ना परमात्मा के साथ। इसीलिए कहते ना मियां बीबी राजी क्या करेगा काजी, काजी की जरूरत कब है? जब तक मियां बीबी राजी नहीं है। तो आत्मा परमात्मा का संबंध हो गया फिर बीच में दलाल की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मुझे याद करो। तो कई कहते इनका फिर फोटो क्यों रखते हैं? हम कहते ये अलौकिक पिता है। अब आप अपने घर में हैं, हम आपके घर में आते और आपके पिता का फोटो है तो आपको मैं कहूंगी ये क्यों रखा है फोटो? अरे मेरा पिता है ना, तो ये भी एक पिता है। पर पारलौकिक पिता वो आत्माओं का पिता, वो सबका पिता है। हाँ जिसके द्वारा हमें उनकी पहचान मिली उसको हमने समझा, पर याद इनको नहीं करना है। याद किसको करना है? उसे एक परमात्मा को करना है जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्व गुणों का सागर है, सदा शिव है, कल्याणकारी है। अब कहाँ याद करना है? अभी अगला प्रश्न है मन को कहाँ ले जाना है? क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं तो याद ही केवल नहीं करते उसके रूप को, वो कहाँ है वो भी याद करते हैं, उसका बैकग्राउंड भी याद करते हैं। भाई मेरा बेटा अमेरिका में रहता है तो एक सेकंड में मन अमेरिका में चला जाएगा अपने बेटे के पास, फोटो वोटो अपने घर का उसने भेजा होगा तो वो घर याद आ जाएगा, भले आप गए नहीं है वहां पर, फोटो भेजा है तो आपको पता तो चल जाएगा ना कहाँ रहता है मेरा बेटा अमेरिका के अंदर। तो परमात्मा ने अपने घर का भी स्थान बताया है। जैसे आत्मा को पहचान लिया, अपने उनके घर को पहचान लिया, ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप को पहचान लिया, उनके घर को भी पहचान सकते हैं बहुत सहज। घर वही है जो बच्चों का घर है, पिता का घर बच्चों के घर से अलग थोड़ी है, बच्चों का घर पिता के घर से अलग थोड़ी होता है। लौकिक दुनिया में चलो हो जाता है पिता अलग बेटा अलग, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछेंगे कि आपका मूल वतन कौन सा है तो वही बताएंगे जहां आपके माँ बाप रहते हैं, आपका जो गांव होगा जहां आपके खेती बाड़ी होगी वही आपका असली मूल वतन है, भले भी बंबई में रहते या कहां भी रहते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा का घर कहाँ है? वही जो आत्माओं का घर बताया। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर से आए हैं और भगवान के घर जाना है। तो भगवान का घर ही तो हमारा घर है ना, हमारा कोई अलग है क्या घर उनसे? उनका घर हमारे घर से अलग है क्या? फिर कई कहते हैं वो तो सब जगह है। हम कहते हैं भावनात्मक स्थिति तो बहुत अच्छी है, ये सदा ही अपने आप को परमात्मा के साथ अनुभव करो। जब भी आपको अनुभूति चाहिए शिव बाबा व शक्ति की अनुभूति होगी, एक सेकंड में अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि उनकी शक्ति आप कहां भी अनुभव कर सकते हो। ये भावनात्मक बात तो बहुत ऊंची है। हम लोग कभी भी अपने आप को अकेला नहीं कहते कि अकेले जाना भी पड़ता, हम कहते शिव बाबा हमारे साथ है, क्योंकि शिव बाबा की याद हमारे साथ है तो शक्ति साथ है ही है। तो वो एक अलग बात है भावनात्मक। लेकिन जहां सिद्धांत की बात आती है, जहां हमें वापस अपने ईश्वर के पास जाना है, जहां से हम आए हैं, वो कहां है भगवान का घर। तो माना ये आत्मा तो वहीं से आई है ना, शरीर तो प्रकृति से आया है, तो गलत नहीं है। भगवान के घर से वह आत्मा आई है, और गया तो भगवान के घर गया, क्योंकि वही घर है। वास्तव में कोई बीच में नहीं जाता परम धाम, ये भी शिव परमात्मा ने हमें बताया। जब तक चक्र का अंत न हो तब तक आत्मा वापस नहीं जाती है। ये जन्म और मरण तो एक पड़ाव है लंबी यात्रा के, पर हाँ यात्रा के अंत में, साइकिल के अंत में जाना तो है घर वापस, पर अभी तो इस चक्र में है, और अभी ये चक्र का अंत हो रहा है। तो चक्र के अंत के बाद वापस घर जाना है, तो यही विडंबना है कि अकेले नहीं जा सकते वापस, जब तक वो स्वयं आकर के आत्माओं को हमें ले न जाए। लखनऊ में हम गए थे कुछ साल पहले, लखनऊ में एक बहुत बड़ा मकान है, उसका नाम है भूल भुलैया, है ना, उसको बारादरी भी कहते हैं। इतना बड़ा मकान है, खुल अंदर ही अंदर, अनेक उसमें ये खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, अंदर जाओ तो मुंह जाओ, बाहर निकल ही ना सको। तो बहुत कोशिश करते हैं लोग अपने आप बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल, सफलता ही नहीं मिलती है। परंतु जब वो गाइड आता है ना, तभी निकल सकते हैं। तो हम लोगों को भी छोड़ दिया अंदर का, आप लोग कोशिश करो निकलने की बात, हम तो फंस गए। वो जैसे वो चूहेदानी होती है ना, वैसे फंस गए हम। तो फिर एक गाइड आया, उसने हमको बताया, युक्ति बताई। और युक्ति क्या बताई कि आपको जो सीढ़ी नीचे की ओर ले जाए वो उस पर नहीं जाओ, जो सीढ़ी ऊपर की ओर ले जाए बस उसी पर चले जाओ, क्योंकि बहुत सीढ़ियां छोटी 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 सीढ़ियां, तो ऊपर की ओर ही जाओ, ऊपर की ओर, नीचे की तरफ मत आना। तो हम लोग जाते गए, फिर भी एक घंटा लग गया अंदर, ऊपर की ओर ऊपर की, धीरे धीरे ऊपर 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 ऊपर, आखिर क्या हुआ, एक दरवाजा आया पूरा आया, और उस दरवाजे सीधी सीढ़ी बाहर गेट तक, सीधी सीढ़ी मिल गई, हम निकल गए। पर जब तक गाइड ने नहीं बताया तब तक हम उस वहीं फंसे हुए थे, उसी चूहेदानी के अंदर। तो परमात्मा कहते हैं ये दुनिया भी इस प्रकार का एक बहुत भूल भुलैया है, इंसान फंस गया है इसमें, निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है, और गलत कर्म करके सोचता निकल जाऊंगा, ये तो और ही फंस रहा है। पर जितने हमारे कर्म ऊंचे होते जाएंगे, ऊंचे होते जाएंगे, उतना हम मुक्त होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। इसलिए वो कौन हमें सिखा सकता है, एक परमात्मा ही सिखा सकता है जो सदा मुक्त है। इसीलिए उनको कहते हैं जानी जानन हार। अब उस परमात्मा ने अपनी पहचान दी है, अपने घर की पहचान दी है कि बच्चे अब मुझे याद करो अपने घर में, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसीलिए पिता हूँ, क्योंकि मैं अब तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हें मुक्त करने के लिए आया हूँ, तुम्हें पावन करने के लिए आया हूँ, अब मुझे याद करो। इसलिए भगवान के माँ वाक्य, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये राजयोग वही है, भगवान का वायदा है, और हमारे आगे एक कमिटमेंट है, एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है कि हम उनको याद करें और हम अपने घर वापस जाएं। तो पहली बात कि उनका स्वरूप क्या है, दूसरी बात वो कहाँ रहते हैं, उसी धाम में। तो उसी धाम में हम अपने आप को जब पहचाने, और फिर मन बुद्धि की आंख से परमात्मा को पहचाने, वो भी एक सितारा है उसी धाम में रहने वाला, और मैं उनको देखूं, जैसे हम किसी को स्नेह से देखते हैं ना, तो आत्मा परमात्मा को देखिए और फिर उनके कर्तव्यों को याद करें। जैसे हम किसी को याद करते तो उनकी बातों को याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, तो वैसे ही परमात्मा के गुणों को याद करें, क्योंकि उनकी अपरमपार महिमा है। जरूर कर्तव्य किए होंगे ना उसने। अब कई समय से वही सब कुछ करता है, हम कहते नहीं, ये भगवान का अपमान करते अगर कहते सब कुछ वही करता है। इसलिए तो कई लोग भगवान को मानते नहीं, कहते ऐसा कैसा भगवान जो दुनिया में इतना दुख पैदा कर लिया, भगवान नहीं तो भगवान नहीं दुख दिया। नहीं, परमात्मा क्यों दुख देगा, वो तो दुख हरता सुख करता है। कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख देने लिए पैदा करते हैं क्या, सोचने की बात है। ऐसे ना माताएं बच्चों को दुख देने लिए पैदा किया क्या, नहीं, सुख देने लिए, वारिस बनाने के लिए, कुल दीपक बनाने के लिए। तो हम भी तो भगवान के कुल दीपक है ना, हमको क्यों दुख देगा भगवान। तो ये संसार कोई दुखरूप नहीं है, ये संसार बड़ा ही सुखरूप है, पर हमने अपने कर्म से ऐसे दुखरूप बनाया है। तो अगर मुक्त होना है तो कर्म से ही मुक्त होंगे, उनकी याद से ही मुक्त होंगे, उनकी याद से ही पावन बनेंगे। तो फिर ये सब कौन करता है जो हम दुनिया में देख रहे हैं, आत्मा करती है। इसलिए संसार दुख रूप नहीं है, परमात्मा कोई दुख का सागर नहीं है, हम आत्माएं अपना मित्र अपना शत्रु है। तो अगर फिर से अपना मित्र बनना है तो परमात्मा से संपर्क जोड़ो, उनसे संबंध बनाओ, वही हमारे माता पिता हम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। तो चलने लिए तैयार है या यहीं फंसे रहना है, हाँ तैयार है ना। तो कैसे हम चलेंगे, जब तक उस घर में पहुंचे तब तक मन से तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। कई कहते बहन जी हमने वो घर देखा ही नहीं है, हम कहते देखा या भूल गए हो, भूल गए हो ना, बच्चे को थोड़ी याद रहता मैं कहाँ पैदा हुआ या कहाँ मेरा बचपन बीता, वो तो उसको क्या याद है, माँ बाप ही तो याद दिलाते हैं ना। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया है कि हे आत्माएं वो ही तुम्हारा घर है, शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, मूल वतन, निराकारी दुनिया, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहता था, फिर तुमको यहाँ भेजा खेलने लिए, पाठ बजाने लिए। जैसे बच्चे को माँ भेजती ना, जाओ बच्चे खेलो, परंतु बच्चा खेलते 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 मेला हो गया। अब मेला तो हो गया पर शाम हो गई, घर जाने का समय आ गया, पर बच्चा खेल में इतना व्यस्त है कि घर नहीं जाना चाहता, घर भी भूल गया, माँ भी भूल गया, खेल में इतना व्यस्त हो गया, फिर वही रोता रहेगा, मारता रहेगा, कपड़े फाड़ता रहेगा, दुखी होता रहेगा, फिर चिल्लाएगा भी माँ बचाओ, फिर माँ कहेगी चलो घर, नहीं खेलना है, खेल ज्यादा प्यारा है, माँ भी प्यारी है पर खेल भी प्यारा है। पर शाम हो गई और बच्चा नहीं चलता है घर, तो माँ क्या करेगी, है? अंधेरा हो रहा है अभी तक खेल ही रहा है, तो माँ क्या करेगी, है? माताएं जबरदस्ती पकड़ के ले जाओगी ना कि यहीं बैठे रहना है सारी रात, नहीं। तो परमात्मा भी कहते हे आत्माएं अभी वापस घर जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें इस दलदल से, विकारों की दलदल से तुम्हें मैं मुक्त कर रहा हूँ, उसके लिए अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो, मुझे पहचानो, मेरे साथ जो टूटा हुआ संबंध है फिर से जोड़ो। तो सब संबंध है मेरे परमात्मा के साथ। कई हम लोगों को कहते बहन जी आपने शादी क्यों नहीं की, हमने कहा की है, शिव साजन से कर ली ना, और कौन सा साजन चाहिए, चाहिए क्या। तो ये साजन भी तो है ना, आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन है, पिता भी है तो साजन भी है तो सखा भी है, तो सब संबंध है हमारे उनके साथ। तो जैसे हम परमात्मा के साथ सब संबंधों का वर्णन करते हैं, अनुभव तो कुछ भी नहीं था, अब अनुभव करो राजयोग में। परमात्मा से बातें करो, वो कैसे करनी है वो भी आपको बताएंगे। अभी केवल आपको परिचय दिया गया कि उसका नाम क्या है, शिव माना कल्याणकारी, स्वरूप क्या है ज्योति स्वरूप, गुण क्या है शांति प्रेम सुख आनंद के वो सागर है, और कर्तव्य क्या है अधर्म का नाश कर सद्धर्म की स्थापना करना। और अभी जो समय चल रहा है ये वही समय है परमात्मा के कर्तव्य का, अब नहीं तो फिर कब नहीं, ये भी भगवान ने हमें सावधान कर दिया है। आपने समय को पहचान लिया बहुत भाग्यशाली हो, अब इसको अगर जीवन में अपनाएंगे तो अति भाग्यशाली कहलाएंगे, और सचमुच योगी जीवन बना लेंगे अपना तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। आना भाग्यशाली, उसको जीवन में अपनाना ग्रहण करना ये सौभाग्यशाली, और सच्चा योगी बनाकर शुद्ध जीवन बनाकर भविष्य जन्म जन्म का भाग्य बना देना ये पद्मा पदम भाग्यशाली। अभी कितने तक भाग्य अपनाते हो आपके ऊपर है, और इस भाग्य को बढ़ाना है इसीलिए आपको परमात्मा का परिचय दिया।